Following is a class by His Grace Amogh Leela Prabhuji on Srimad Bhagavad Gita, 9th chapter, text number 23, on 5th of July 2015 at ISKCON Gurgaon. Hare Krishna.
किसी के पास भगवद गीता है? रेज योर हैंड. किस किस के पास भगवद गीता है? किस किस के पास स्मार्टफोन है? रेज योर हैंड. स्मार्टफोन किस किस के पास है? स्मार्टफोन किस किस के पास है? स्मार्टफोन स्मार्टफोन जिसमें उंगलियां फेरते हैं ना कैंडी क्रश खेलते हुए, बोला स्मार्टफोन किस किस के पास है? सबके पास है ना. भगवद गीता किस किस के पास है? कम लोगों के पास है भाई. स्मार्टफोन तो है ना, लेकिन भगवद गीता नहीं है हमारे पास. कितने स्मार्ट लोग हैं हम लोग. आजकल हमारे फोन स्मार्ट हो गए, हम लोग डम्बो हो गए ना. फोन स्मार्ट हो गए. किसको स्मार्ट होना चाहिए, फोन को या इंसान को? आज कौन स्मार्ट हो गया, फोन या इंसान? फोन. कभी ऐसा मैंने देखा है ये हमारे स्मार्ट भक्त हैं या हमारे स्मार्ट लोग हैं? नहीं, स्मार्टफोन तो जरूर है. आजकल सैमसंग का नाम सुना सबने? सैमसंग का किस किस नाम सुना? सैमसंग, सैमसंग गैलेक्सी, सैमसंग न्यू नोट 3, सबने सुना है? यस. कभी साधु संग सुना है? साधु संग नोट 3, साधु संग गैलेक्सी ना? नेवर. सैमसंग में मन लगा होगा तो साधु संग कहां करेंगे भाई. सो किस किसी बात भगवद गीता है? संडे को सबको अपनी कॉपी लेके आनी चाहिए भगवद गीता की. एक जेब में हो स्मार्टफोन, दूसरे जेब में हो या पॉकेट में हो या बैग में हो भगवद गीता एज इट इज, ये होना चाहिए, है कि नहीं? देखो ये है कि नहीं भैया, हाल है कि नहीं? अरे धत तेरे, ग्लूकोन डी पिलाओ सबको पहले, उसके बाद हम भगवद गीता क्लास शुरू करेंगे भाई. ओके, सो हम चैप्टर 9 चैप्टर नंबर वर्स नंबर 23 पर हैं. ये प्यान्य देवता भक्ता रजन्ते श्रद्धान्विता तेती मामेव कौन्तेया यजन्त विधिपूर्वकम्. ये प्यान्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेती मामेव कौन्तेया यजन्त विधिपूर्वकम्. ये प्यान्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेती मामेव कौन्तेया यजन्त्यविधिपूर्वकम्. यस, को पढ़ना चाहिए.
प्यान्य देवता भक्ता
और कोई माताएं वैष्णवीज और कोई माता जी इसमें? और कोई बात है जिसमें लास्ट हे प्यान देवता भक्ता हे प्यान श्रद्धा भक्ता शब्दार्थ अनुवाद होता है कृष्ण प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ ये जो अपि ही अन्य दूसरे देवता देवताओं के भक्तः भक्तगण यजन्ते पूजते हैं श्रद्धा अन्विताः श्रद्धा पूर्वक ते वे अपि भी मां मुझको एव केवल कौन्तेय हे कुंती पुत्र यजन्ति पूजा करते हैं अविधि पूर्वकम त्रुटिपूर्ण ढंग से। अनुवाद हे कुंती पुत्र मेरे पीछे आइए हे कुंती पुत्र जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं किंतु वह यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तात्पर्य श्री कृष्ण का कथन है जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करने में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते यद्यपि ऐसी पूजा अप्रतिष्ठा मेरी ही पूजा है। उदाहरणार्थ जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी ना डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है अमाशय में भोजन की पूर्ति करना। उसी तरह भगवान देवता विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक देश को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक जो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं अथवा इन्हें घूस देना अवैध है। यहां पर इसी को अविधि पूर्वकम कहा गया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते हैं। ये अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं किंतु वह यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो अभी हम 9th चैप्टर में हैं श्रीमद् भगवद गीता के। सो भगवद गीता के अंदर कितने चैप्टर हैं कुल मिला के? यस, कुल मिला के इसमें 25 चैप्टर्स हैं। राइट, कितने? 18 चैप्टर हैं। तो इसमें 18 चैप्टर हैं। तो पहले 6, आखिरी के 6 और बीच के 6, 6 6 6। तो लाइक इन गुजराती से केम 6 मजा मा 6, दिस इज मजा मा 6, क्योंकि 6 6 6 ये जो 6 है ये 6 की कुंजी है। दिस इज अमेजिंग। जैसे अगर हम कोई सैंडविच खाते हैं तो अगर हम बोले चीज सैंडविच तो चीज कहां होता है? बीच में। कौन से बीच में? लेगुना बीच में या गोवा बीच में? दो ब्रेड के बीच में। यस दैट्स ट्रू। तो ये ब्रेड के बीच में जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं चीज सैंडविच। अगर चीज बीच में होता है, राइट। अच्छा वेज सैंडविच किसको बोलते हैं? तो वेज कहां पर होता है? फ्रिज में नहीं होता? दो ब्रेड के बीच में होता है, बिल्कुल सही बात। अच्छा मैक आलू टिक्की, मैकडॉनल्ड्स टिक्की कहां होती है? अच्छा आप लोग कभी मैकडॉनल्ड्स नहीं गए होगे ना, आप जन्म से है ना? ठीक है, ये लोग कभी गए नहीं मैकडॉनल्ड्स। सब साधु संत महात्मा है यहाँ पर बचपन से, आज तक कभी मैकडॉनल्ड्स में कालो टिक्की नहीं खाएगा। तो कहाँ होता है? बर्गर में, दोनों के बीच में, यानी कि सैंडविच का नाम रखा जाता है जो उसके बीच में है, है ना? उसकी ब्रेड से उसका नाम होता है। कभी हमने ब्रेड सैंडविच नहीं सुना, हमने चीज सैंडविच सुना है, हमने हमने वेजिटेबल सैंडविच सुना है, हमने मैकालू टिक्की सैंडविच सुना है, हमने जैम सैंडविच सुना है, लेकिन कभी भी हमने ब्रेड सैंडविच नहीं सुना, राइट? क्यों? क्योंकि जो बीच में होता है वही असली माल होता है, और जो अगल बगल में होते हैं वो उसका स्वाद बढ़ाते हैं, उसके उसकी प्रोटेक्शन करते हैं, लाइक दैट। तो इसी तरह से भगवद गीता में पहले 6 चैप्टर हैं, आखिरी के 6 चैप्टर हैं और बीच के 6 चैप्टर हैं। पहले के 6 चैप्टर हैं वो कर्म योग की बात करते हैं, ओके? आखिरी के 6 चैप्टर हैं वो ज्ञान योग की बात करते हैं, यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करते हैं, और बीच के 6 चैप्टर हैं वो भक्ति योग के चैप्टर हैं। तो इस प्रकार से 3 हैं, ओके? अगर एक माँ के 2 बच्चे हों तो वो किस पोज में फोटो खिंचाते हैं? एक बच्चे को यहां लेती है माँ, एक बच्चे को यहां लेती है, कहते हैं बंटू, बंटी और बबली आ जाओ बेटा, बंटी को यहां बैठाएगी, बबली को यहां बैठाएगी, बंटी और बबली को इस गोद में बिठा के माँ बीच में रहकर फोटो खिंचाती है, से चीज हरे कृष्णा, और फोटो खिंचाती है। माँ कहां होती है? बीच में, और बच्चों को यहां पे और यहां पर रहती है, और इस तरह से फोटो खिंचाती है, राइट? यहां पर अगर कोई राजा भी होता है तो राजा कहां चलता है? फौज के एकदम सामने या फौज के एकदम पीछे? अगर सबसे आगे चलेगा, एक तीर लगा वो तो गया, समाप्त। सबसे पीछे चलेगा तो सारे सैनिक सोचेंगे डरपोक आदमी सबसे पीछे तो ये है, इसको लड़ने का इसमें दम ही नहीं है। तो इसीलिए राजा को बीच में चलना होता है ताकि वो दिशा निर्देशन भी कर सके और वो तुरंत मारा भी ना जाए, तो बीच में चलता है वो। तो इसी तरह से जो भक्ति योग है वो बीच में रखा गया। तो भक्ति योग क्या करता है? दोनों तरफ के जो योग है, कर्म योग, ज्ञान योग, ये इसके छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इन बच्चों की देखरेख करता है, इनको नरिश करता है, इनका पालन पोषण करता है, और भक्ति योग जो है बीच में है, वास्तव बीच में। तो पहले 6 चैप्टर, आखिरी के 6 चैप्टर और बीच के 6 चैप्टर। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कि ना भगवद गीता में क्या दिया है जी, कर्म करो। सुना आपने गीता में तो ये लिखा है, कर्म करो। पहला चैप्टर पहला श्लोक कर्म करो, पहला चैप्टर दूसरा श्लोक कर्म करो, पहला चैप्टर तीसरा श्लोक कर्म करो, दूसरा चैप्टर पहला श्लोक कर्म करो, 18वां चैप्टर पहला श्लोक कर्म करो, 18वां चैप्टर आखिरी श्लोक कर्म करो। कुछ तो शर्म करो, कभी गीता खोली तुमने? बदमाश, तुमने गीता कभी खोली तुमने कभी? हैं? कर्म करो, कर्म करो, कुछ तो शर्म करो। इसका मतलब कभी इसने आदमी ने कभी गीता नहीं खोली, 100% श्योर। भगवान तो बोल रहे हैं कर्म बंधन जो है बांधते हैं वास्तव में। तो इसीलिए भगवद गीता में ऐसा नहीं लिखा है कि कर्म करो। सो टॉप मोस्ट योग जो भगवान ने गीता में बताया है वो छठे अध्याय में बताया भगवान जा रहे हैं कि वास्तव में जो भक्ति योग है वो टॉप मोस्ट है, चैप्टर 6 वर्स नंबर 47। ये सब आप बाद में देख लीजिएगा, जहां भगवान बोल रहे हैं कि सभी योगों में किस प्रकार से वो योगी जो श्रद्धा पूर्वक मेरी प्रेम में सेवा करता है, अपने मन को मुझ में स्थिर करता है, ऐसा व्यक्ति सभी योगों में सर्वश्रेष्ठ है, जो भक्ति योगी है वास्तव में। तो इसीलिए ये जो भक्ति योग है ये बीच में रखा गया। तो भक्ति योग के बीच के चैप्टर्स हुए चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 12 तक, भक्ति योग के चैप्टर्स हुए, राइट? अच्छा, चैप्टर 7 से लेकर 12 तक अगर ये है तो इसका भी क्रीम चैप्टर्स कौन से हुए फिर? एकदम सेंट्रल गणित थोड़ा सा, यस, 9वां और 10वां अध्याय एकदम बीच में आते हैं, राइट? एकदम बीच में आते हैं। तो अभी हम हैं 9वें अध्याय में, यानी हम इस समय भगवद गीता की क्रीम की भी क्रीम में चल रहे हैं समय। इसीलिए इसका जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो अभी हम सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल नॉलेज को कॉन्फिडेंशियल नहीं रखने वाले, अभी आपके सामने हम लोग जो है इसको खोलने वाले हैं। तो जैसे जैसे ये भगवद गीता आगे बढ़ेगी, एवरी संडे लव फीस्ट, हम लोग इसमें से श्लोकास देंगे। ऑफ कोर्स ईच एंड एवरी वर्ड्स ऑफ द गीता इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि पहले 6 चैप्टर जो है नॉट सो इंपॉर्टेंट, आखिरी 6 चैप्टर मे बी नॉट सो इंपॉर्टेंट, जो बीच के 6 हैं दे आर द ओनली इंपॉर्टेंट। कर्म योग के चैप्टर्स हमको तैयार करते हैं कि हम भक्ति योग के ज्ञान को स्वीकार कर सकें, और फिर भक्ति योग के चैप्टर्स को स्वीकार करने के बाद इनको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए फिर आखिरी के 6 चैप्टर आते हैं। तो इस प्रकार से भगवद गीता इट्स अ कंप्लीट पैकेज, एक्चुअली इट्स अ कंप्लीट पैकेज। तो आज हम यहां पर पढ़ रहे हैं देवी देवताओं के बारे में, ठीक है? और स्पेशली ये जो चैप्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में है रेलगाड़ी होती है, मंदिर के अंदर रेलगाड़ी। साउथ इंडिया में दिक्कत नहीं है, साउथ इंडिया में लोग जानते हैं विष्णु और कृष्णा भाई परम भगवान है, इसलिए ज्यादातर मंदिर जो है विष्णु के हैं या भगवान कृष्ण के हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन नॉर्थ इंडिया के अंदर ये दिक्कत आती है। नॉर्थ इंडिया के अंदर हम लोग सिंपल कैलकुलेशन लगाते हैं कि देखो भाई जितनी कृपा आपको चाहिए उतनी मूर्तियां मंदिर के अंदर रख दो, चाहे कोई भी हो भैया ले आओ उसको और मंदिर में डाल दो, क्योंकि जितनी मूर्तियां आती है उतनी कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी ना, 2 + 2 = 4, से दो ही मूर्तियां आई ना, अगर 3 मूर्ति कर दूंगा तो क्या होगा, 2 + 2 + 2 = 6 हो जाएगा, और मूर्तियां आ जाएंगी तो 2 + 2 + 2 + 2 = 8 और कृपा आएगी। तो इस तरह से नॉर्थ इंडियन मंदिरों में जो है रेलगाड़ी होती है, चूज कर लो जो आपको पसंद है आप पसंद कर लो, लेकिन जो भगवद गीता है वो हमें बता रही है परम भगवान के बारे में। जैसे कि चार्ली चैपलिन लुक लाइक कॉन्टेस्ट हुआ था जर्मनी में चार्ली चैपलिन के समय में, चार्ली चैपलिन लुक लाइक कॉन्टेस्ट की, जो व्यक्ति चार्ली चैपलिन कितना दिखेगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो चार्ली चैपलिन ने भी अखबार में पढ़ा कि अच्छा ऐसा कॉन्टेस्ट हो रहा है, तो चार्ली चैपलिन ने भी इसने अप्लाई किया, तो इस कॉन्टेस्ट को किसको जीतना चाहिए, चार्ली चैपलिन लुक लाइक कॉन्टेस्ट में किसको जीतना चाहिए बताइए, चार्ली चैपलिन को। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चार्ली चैपलिन को इसमें फर्स्ट प्राइज नहीं मिला, चार्ली चैपलिन को सेकंड प्राइज भी नहीं मिला, थर्ड प्राइज भी नहीं मिला, उसको कॉन्सोलेशन प्राइज दिया गया। देखो चार्ली चैपलिन तुम चार्ली चैपलिन जैसे नहीं दिखते, कोई और है जो चार्ली चैपलिन जैसे दिखता है, तो ऐसे लोगों को समझदार कहेंगे बेवकूफ कहेंगे, समझदार कहेंगे हाँ है ना, है ना, बोलिए ऐसे व्यक्ति को समझदार कहेंगे जो चार्ली चैपलिन लुक लाइक कॉन्टेस्ट में चार्ली चैपलिन के अलावा किसी और को प्राइज दे देता है, बोलेंगे नहीं। लेकिन हम ऐसा करते हैं जब हम भगवान की पूजा करने के लिए आते हैं, जो भगवान नहीं है उनको भगवान मानते हैं, जो भगवान है उनमें डाउट करते हैं ये कैसे भगवान हो सकते हैं, जो लड़कियों के साथ रात को नाचे भला उनको कैसा भगवान मान ले भैया, कैसे भगवान मान ले, जो चुरा के माखन खाए भला उसको कैसे भगवान मान ले भाई। अब देखिए माखन चुराने की बात भी अगर देखें, माखन चुराने की बात अनूप जलोटा जगदीश सिंह ने गाय दो लखपति हो गए राइट, अगर किसी और साधारण मनुष्य की चोरी की कुछ बातें अगर हो, अगर वो अगर गाय जाए, फॉर एग्जाम्पल से कोई चोपड़ा साहब है ठीक है, उन्होंने भाई फ्रिज खोल के माखन से गाजर का हलवा चुराया ठीक है, और अगर हम ये गाना गाते हैं और एक ऐसी सीडी रिलीज करें ठीक है, चोपड़ा साहब ने फ्रिज खोल के गाजर का हलवा चुराया, गाजर का हलवा चुरा के गाजर का हलवा खाया, फ्रिज खोल के फिर चोपड़ा साहब ने हलवा खाया, 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 हलवा खाया, हलवा खाया, हलवा खाया, हलवा खाया, हरिओम चोपड़ा साहब। ऐसी सीडी आपके से कौन लोग खरीदेगा, बल्कि ऐसे आदमी केस करेंगे तूने ऐसी सड़ी हुई कंपोजिशन तूने रिलीज कैसे की तूने राइट। लेकिन भगवान कृष्ण के चोरी करने की बातें ये गा गा के जगदीश सिंह और अनुज चोपड़ा साहब लखपति हो गए, करोड़पति हो गया, सो दैट इज कृष्णा। तो हमारे साथ यह है कि जो भगवान है उन पे तो विश्वास नहीं करते, और जो भगवान नहीं है उनको स्वीकार कर लेते हैं कि कोई अगर सेब निकाल देगा, पता हमारे महाराज जी जो है स्वामी जी ऐसे सेब निकाल देते हैं यार, भगवान है मतलब, तो जो भगवान नहीं है उसको भगवान मान लेते हैं, और जो भगवान है उन पे डाउट करते हैं कि पता नहीं भगवान है या नहीं है। तो इनके बारे में जो है यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, जो वो कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो देवी देवताओं के बारे में यहाँ पर चर्चा चल रही है। तो परम भगवान है और साथ में देवी देवता भी है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर होता है और उसकी कैबिनेट में बहुत सारे मिनिस्टर्स और भी होते हैं राइट। हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, कौन है, कौन है, बैरक ओबामा, अरे मुंह खोल लो, जो मुंह नहीं खोलता उससे 5,000 रुपए डोनेशन लेते हैं मंदिर के लिए हम लोग। हाँ जी कौन है हमारे मंदिर का नहीं सॉरी हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी, यस नरेंद्र मोदी। अगर कोई ऐसा बोले कि भाई देखो प्राइम मिनिस्टर जिसको मानना है मान लो यार ठीक है, स्मृति ईरानी को मानना है स्मृति ईरानी को प्राइम मिनिस्टर मान लो, अरुण जेटली को मानना है अरुण जेटली को मान लो ठीक है, कपिल सिब्बल को मानना है कपिल सिब्बल को मान लो, और अगर आपका मन करता है कि आप नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर मानना चाहते हैं इट्स ओके भाई, हर एक की अपनी अपनी श्रद्धा है। देखिए आप भी सही हैं ये भी सही हैं वो भी सही, हम सब सही हैं, हर एक का अपना अपना प्राइम मिनिस्टर होता है, राइट। तो ऐसे व्यक्ति की पॉलिटिकल नॉलेज को आप 10 में से कितने मार्क्स दोगे? पिछले बार बता रहे हमें कि कितने देंगे, कितना? जीरो। लेकिन हम यूजली इसको लेके चलते हैं, जब देवी देवताओं के कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करते करते, देखो यार जिसमें तुम्हारा विश्वास हो उसको भगवान मान लो। देखो है तो सारे भगवान है, सारे प्राइम मिनिस्टर हैं, स्मृति ईरानी प्राइम मिनिस्टर है, अरुण जेटली प्राइम मिनिस्टर है, सब प्राइम मिनिस्टर ही हैं। जो प्राइम मिनिस्टर आपको पसंद आए ले लो, पर्ची निकालो ले लो, कदम। तो जब भगवान को पसंद करने की बात आती है तो हम इस तरह का जो है त्रुटिपूर्ण तरीका, जब भगवान बता रहे हैं ये त्रुटिपूर्ण तरीका अपनाते हैं कि किसको वास्तव में चुना जाए। पर वास्तव में जो जितने भी देवी देवता हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, पर ये सारे के सारे मिनिस्टर्स हैं भगवान कृष्ण की कैबिनेट में, जिसके प्राइम मिनिस्टर हैं भगवान कृष्ण, प्राइम मिनिस्टर कृष्णा। तो प्राइम मिनिस्टर अगर कृष्ण हैं तो इनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके पास है? हाँ लक्ष्मी, यस। अच्छा एजुकेशन मिनिस्ट्री किसके पास है? सरस्वती। डिफेंस मिनिस्ट्री किसके पास है? दुर्गा। सो टॉप थ्री मिनिस्ट्रीज माताओं को दी गई है भगवान कृष्ण के द्वारा। तो जो लोग कहते हैं वैदिक धर्म के अंदर जो है स्त्रियों का मान सम्मान ही ज्यादा, एक्सक्यूज मी, इन कृष्णास मिनिस्ट्री वुमेन इज गिवन हाईएस्ट रिस्पेक्ट, टॉप मोस्ट रिस्पेक्ट। तो ये भगवान श्री कृष्ण का कैबिनेट है, जैसे कि सबसे डिफिकल्ट डिपार्टमेंट उन्होंने दिया है अपने मिस्टर डिपेंडेबल को, जैसे क्रिकेट के अंदर हमारे विराट कोहली साहब वो है मिस्टर डिपेंडेबल, तो भगवान कृष्ण की कैबिनेट में भी है मिस्टर डिपेंडेबल, और वो है शिवजी। शिवजी हैं मिस्टर डिपेंडेबल ऑफ कृष्णा, और इसीलिए भगवान कृष्ण ने सबसे डिफिकल्ट डिपार्टमेंट शिवजी को दिया, भूत प्रेतों और तामसिक लोगों का उद्धार करना। सबसे डफर लोग सबसे बेस्ट टीचर को दिए जाते हैं ना, कि भाई इनका पार, इनका बेड़ा पार तो आप ही लगा सकते हो। तो इसीलिए जो है जो तामसिक लोग हैं इनका डिपार्टमेंट दिया जाता है शिवजी को, कि शिवजी आप इतने पवित्र हैं कि आप ही इन लोगों का उद्धार कर सकते हैं क्योंकि ये घोर तामसिक लोग हैं। तो इस तरह से भगवान ने जो है अलग अलग डिपार्टमेंट दिए हैं, जैसे वर्षा का डिपार्टमेंट किसके पास? इंद्र। पर सारी कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं भगवान श्री कृष्ण। ओके, पर सवाल यह आता है कि भगवान कृष्ण ये देवी देवताओं की पूजा अलाव क्यों की? पर सिंपल ऐसे होता है, सारे देवी देवता किनारे करो यार, सिर्फ एक लौते होते भगवान कृष्ण, एक लौते होते भगवान कृष्ण, तो भाई आड़ा टेढ़ा लेफ्ट राइट जैसा आदमी होता सबके सब भगवान कृष्ण की पूजा करते। अभी हम देखते हैं नॉर्थ इंडिया में लोग तरह तरह के देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं, अब ऐसा क्यों? भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों किया कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 इनमें से मेन हैं, इतने सारे देवी देवता भला भगवान ने क्यों दे दिए? अगर भगवान ऐसा नहीं करते तो कन्फ्यूजन नहीं रहती, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये देवी देवता है इसी वजह से कन्फ्यूजन नहीं है, देवी देवताओं के होने की वजह से कन्फ्यूजन नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अगर यहां मेरे बहुत सारे लोग आए हुए हैं एंड एवरीवन सेइंग कि प्रभु जी हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि ना यहाँ पर तो बड़ा मिक्स क्राउड है, इस मिक्स क्राउड में मेरे को अच्छे से अच्छे लोग ही चाहिए जो मैं जिनके साथ मैं दोस्ती करूँ। आई विल नॉट मेक फ्रेंडशिप विद एनी टॉम डिक एंड हैरी, मैं हर किसी को अपना दोस्ती बनाने वाला, तो उसके लिए तरीका अपना लूंगा। मैं कहूंगा कि ओके एवरी वन लिसन, अनाउंसमेंट, कमिंग वीकेंड वी आर गोइंग फॉर अ भूज पार्टी, दारू पार्टी के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट दारू, फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग, जिस जिसको आना है एम्बियंस मॉल पे प्लीज पहुंच जाएं। तो इनमें से कुछ कहेंगे अरे यार बहुत ही बड़े प्रपोजल है, और कुछ लोग जो है वहां पहुंचेंगे, फ्री की दारू मिलेगी, फ्री का भेलपूड़ी मिलेगी, सबको फ्री का चने वगैरह मिल जाएंगे, अरे बहुत बढ़िया हो जाएगा, फोकट का मिलेगा, दारू पियेंगे फोकट की। अब ऐसे लोग जो है इस क्राउड से अलग हो गए, पहुंच गए एम्बियंस मॉल फ्री की दारू पीने के लिए। अब एक्चुअली ये लोग जो है मेरे से दोस्ती करने के लायक नहीं थे, क्योंकि मेरे को दोस्ती दारू पीने वालों से नहीं करनी थी, मुझे उन लोगों से दोस्ती करनी थी जो कि दारू नहीं पीते, शराब नहीं पीते, मदिरापान नहीं करते। तो ऐसे लोगों करने के लिए मैंने क्या किया, एक ऑप्शन खोल दी कि जिन जिनको फोकट की दारू पीनी है, शराब पीनी है, तो मेरे साथ एम्बियंस मॉल आ जाए, तो एम्बियंस मॉल पहुंच जाएंगे वो। इस तरह से भगवान भी क्या देवी देवताओं का एम्बियंस मॉल खोल के रखते हैं कि जिसको अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी करनी है, संसार को भोगने की बहुत बहुत इच्छाएं और पूरी करने की आपको फैसिलिटी चाहिए, हे राय गॉड देवी देवता, तो लगा दे रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। तो लोग जो है फिर देवी देवताओं के पास जाते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। जैसे कई हैं माताएं हैं वो 16 सोमवार के व्रत रखती हैं, 16 सोमवार के व्रत रखती हैं ताकि आज्ञाकारी पति मिले, है ना, सोना सोना शुद्ध शुद्ध पति मिले, क्यूटी क्यूटी पति मिले, जो मेरे मेरा कहना माने, मैं बोलूँ बर्तन साफ कर दो बर्तन साफ कर दे, मैं बोलूँ कपड़े धो दे तो कपड़े धो दे, मैं संडे लफीस में आ रही हूँ तो पीछे से बच्चों को संभाल लें, ऐसा प्यारा सा पति मिल जाए इसके लिए 16 सोमवार के व्रत रखने बहुत बढ़िया रहेंगे। तो शिव जी के 16 सोमवार के व्रत रखती हैं बेचारी, ठीक है, और इस प्रकार से 16 सोमवार के व्रत का समापन हुआ। अब तो एक अच्छा पति मिलेगा और फिर उनको पति मिल भी जाता है और फिर उनकी शादी हो भी जाती है। लेकिन ये भी टेढ़ा निकला है, इसकी ये भी टेढ़ा निकला है यार, ये क्या हो गया, शिव जी से मैंने प्रार्थना की थी कि अच्छा लड़का मिले लेकिन अच्छा लड़का तो अभी भी नहीं मिला। इसमें शिव जी का दोष नहीं होता, इसमें शिव जी का दोष नहीं है, असल में क्या है, लड़कों का सैंपल साइज ही इतना खराब है कि उन खराब लड़कों के अंदर जो बेस्ट लड़का चुना जाएगा वो भी क्या होगा, खराब। तो शिव जी इसमें कुछ नहीं कर सकते भाई, वो क्या करेंगे, पूरा सैंपल साइज ही खराब है लड़कों का। तो 16 सोमवार के व्रत रखने के बाद भी बेचारे और बेचारी माताओं को कुछ हो नहीं पाता, कोई ढंग का लड़का मिलता नहीं है। फाइनली कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो कि ना हमारे इस्कॉन टेम्पल्स में आते हैं यहां पर देखने के लिए, यहां पर क्या शुद्ध शुद्ध क्यूटी क्यूटी लड़के, ठीक है, धार्मिक लड़कियां यहां मंदिर में मिल जाती हैं। और ऐसे लोग क्या है पीछे खड़े रहते हैं, ये हरिनाम संकीर्तन में यहां पर नाचते नहीं है भगवान के आगे, ना कीर्तन में नाचेंगे ना कीर्तन में गाएंगे, ये पीछे पीछे रहते हैं देखते रहते हैं, उसको देख अच्छा लग रहा है, अच्छी लग रही है, जाके बात करते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो बेटा जी आप कहाँ रहते हो, क्या नाम है आपका, कौन कौन है आपके घर में, जी मेरा नाम राधिका दासी है और मेरे हस्बैंड का नाम, अरे हस्बैंड ठीक है ठीक है, हरे कृष्णा शादीशुदा है वो। तो कुछ लोग इसलिए भी आते हैं, इस्कॉन गुड़गांव डॉट मैट्रीमोनियल डॉट कॉम में रजिस्टर करें और शोधे शोधे क्यूटी क्यूटी धार्मिक लड़के और धार्मिक लड़कियां पाए, इसलिए भी आते हैं। सो पीपल कम फॉर मटीरियल गेन, भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी लोग आते हैं, भगवान के पास भी आते हैं और देवी देवताओं के पास तो बहुत ही जाते हैं, ठीक है। तो वास्तव में इसलिए भगवान ने देवी देवताओं की पूजा अलाव की, वाय, क्योंकि देवी देवताओं की पूजा अलाव करने से क्लियर हो जाएगा भाई कौन है जो शुद्ध हृदय से भगवान की पूजा करना चाहता है और कौन है जो स्वार्थ के साथ भगवान के पास जाना चाहता है। तो स्वार्थी लोग जो हैं वो देवी देवताओं के पास जाते हैं। अब कोई कह सकता है कि क्या कोई निस्वार्थ भाव से देवी देवताओं के पास जा सकता है, वह शुद्ध भक्ति दुर्गा मां की, शुद्ध भक्ति गणपति बप्पा, ऐसा नहीं हो सकता क्या, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ऐसे होता नहीं है, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। जैसे एक बार एक हिंदू मुस्लिम और एक ईसाई, ये तीनों नाव में थे, तो नाव में डिस्कवर कर दिया इसमें छेद है, इसमें तो ये तो नाव तो डूब जाएगी, तो सबने डिसाइड किया भैया अपने अपने भगवान को याद कर लो, नाव तो डूबनी डूबनी है, अब तो हम लोग नदी के बीच में, अब तो मरना ही मरना है। तो जो क्रिश्चियन था उसने बोला, ओ जीसस क्राइस्ट यू आर माय सेवियर, आई एम योर चाइल्ड, प्लीज प्रोटेक्ट मी। जीसस क्राइस्ट आए, उन्होंने सेव कर दिया उसको। और मुसलमान ने बोला, ए अल्लाह मैं तेरा बंदा, मुझे बता ले खुदा, मैं तेरी खिदमत में आना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने बचा लिया उसको। और फिर जो हिंदू था उसने बोला, गणपति अप्पा मोरिया, मुझे बचा ले गणपति अप्पा, ये डूब के मर गया बेचारा। तो मरने के बाद ये क्या गणपति जी के पास, गणपति जी आपने क्या किया, पहले दो लोगों ने जब भगवान को याद किया उनको तो बचा लिया, मैंने जब आपको याद किया आपने मेरे को डुबो दिया। तो गणपति जी ने कहा, देख तू हर साल मेरे को समुद्र में डुबोता है, एक बार तो मेरा बनता है ना। तो इस प्रकार से कितने लोग हैं जो कि रिचुअल्स को फॉलो करके वास्तव में अपने मतलब पूरा करना चाहते हैं, उनको देवी देवताओं से कुछ लेना देना है नहीं है। There was one पंडित जी, उसके बाद एक व्यक्ति आया, उसने कहा, जी हमारे ना कष्ट दूर कर दीजिए, कष्ट दूर कर दीजिए हमारे। अरे क्यों, क्या दिक्कत है? तो उसकी फिर कुंडली मंगाई और सीधा कुंडली देखी, कहते देखो भैया तुम्हारी तो ना 7.5 चल रही है, 7.5 शनि की महादशा है, 7.5 है, तुम्हारे तो कचूमर निकलने वाले, तेल निकल जाएंगे तुम्हारे तो, कहीं के नहीं रहोगे, ठोकरे खाओगे, शरीर बिगड़ जाएगा तुम्हारा, पैसा रहेगा नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारे अपने तुमको ठुकरा देंगे, कहीं के नहीं रहने वाले तुम, कहते ऐसा क्या, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कहते भाई इसके लिए तो अनुष्ठान करना पड़ेगा, अनुष्ठान करना पड़ेगा इसके लिए, कितना पैसा लगेगा उसमें, इसके लिए भैया देखिए 500 रुपये लगते हैं, 500 रुपये, 500 रुपये लगते हैं इसके लिए, कह रहा है यार 500 रुपये बहुत ज़्यादा है, मैं गरीब आदमी कहाँ से दूंगा मैं, ठीक है भैया तुम्हारे लिए 250 में कर देंगे, 250 दे दो, 250 भी बहुत ज़्यादा था, ये इतने में तो हमारा 250 नहीं दे पाऊंगा मैं, अरे यार चल तू 100 निकाल, चल 100 में तेरा कर देंगे भाई, कर दे तेरा 100 में कर देंगे, कहते भाई 100 रुपये भी नहीं है मेरे पास, अरे चल तू 50 निकाल यार, 50 तो निकाल, ऐसा 50 भी नहीं है, 50 तेरे पास, अच्छा 10 रुपये निकाल दे, 10 रुपये निकाल दे भाई कम से कम, 10 रुपये तो भी है नहीं मेरे पास, 10 रुपये भी नहीं तेरे पास, चल 1 रुपये निकाल, चल 1 रुपये निकाल, 1 रुपये का तो कर कुछ, कुछ तो दान कर, 1 रुपये तो पंडित जी ने कहा देख बेटा तेरा 750 कुछ नहीं बिगाड़ सकती तेरा, तेरे पास कुछ होना चाहिए ना बिगाड़ने के लिए, तेरे पास तेरे को क्या बिगाड़ी तेरे 750, तेरा शनि कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता तेरा। सो पीपल गो विद देयर ऑन मटीरियल एकम्प्लिशमेंट बट फैस्टली स्पीकिंग ये वास्तव में पूरे कभी होने वाले नहीं, और अगर हो भी जाएंगे तो कभी भी हृदय जो है वो तृप्त होने वाला नहीं है। ऐसे एस्ट्रोलॉजी है, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे थे, लोग से जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास अपनी किस्मत बदलने के लिए, एस्ट्रोलॉजर के पास, लेकिन एस्ट्रोलॉजर से आज तक ना तो किसी की किस्मत बदली है, वो दूसरों की किस्मत छोड़ो अपनी खुद की किस्मत ही बदल पाया वो आज तक, 1100 रुपये लेकर कंप्यूटर से निकालता है वो जन्मपत्री, वो जो अपनी अपनी जिंदगी नहीं बदल पा रहा वो आपकी जिंदगी बदल कैसे बदलेगा। देखिए आप पन्ना पहन लीजिए 32 रति का, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे आपके, आप मोती पहन लीजिए 6 रति का, या फिर आप पहन लीजिए आप लोहे की अंगूठी, उससे शनि महाराज शांत होते हैं, ठीक है। और या आप क्या करिए, आप केले के पत्ते के ऊपर हर बृहस्पतिवार को पानी चढ़ाइए, उसकी 4 परिक्रमा करिए, कष्ट दूर हो जाएंगे आपका। काल सर्प योग चल रहा है, काल सर्प योग चल रहा है, माय गॉड काल सर्प योग क्या होता है, हमारे घर में तो काला सांप कभी नहीं आया, ये कैसा काल सर्प योग है। देखिए जब राहु और केतु के बीच में आपकी सारी राशियां होती हैं तो उसको बोलते हैं काल सर्प योग। तो इसीलिए देखिए अगर आप यदि आप चाहते हैं काल सर्प योग ठीक हो जाए तो आप ऐसा अनुष्ठान कराइए, तो अनुष्ठान कराते आप जब करिए ओम केतवाय नमः, ओम केतवाय नमः, ओम केतवाय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम राहवाय नमः, ओम राहवाय नमः, इससे क्या होने वाला है भाई, बल्कि इससे जितने भी देवी देवता होते हैं इन ग्रहों के ये और क्रोधित हो जाते हैं कि ये व्यक्ति अपने कर्मों के फलों को जबरदस्ती बदलने की कोशिश कर रहा है, जबरदस्ती बदलने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए इससे जितने भी ये जो ग्रहों के स्वामी होते हैं नाराज होते हैं, जैसे शनि देवताओं को शांत करने के लिए कुछ लोग सरसों का तेल चढ़ाते हैं, दाल चढ़ाते हैं, इससे शनि देवता नाराज होते हैं, क्रोधित होते हैं कि आर्टिफिशियल तरीके से अपने कर्मों को काटना चाह रहा है। असली तरीका यह है कि भगवान का भक्त बन जाएगा तो सारे के सारे से कर्म निपट जाएंगे। तो लाइफ में जब भी कभी डिफिकल्टीज आती हैं, मुश्किलें आती हैं, तो उनका वास्तव में एक पर्पस है, और उनका पर्पस यह है कि इन कठिनाइयों में हम भगवान के शरणागत हो जाएं। जैसे जब रावण के द्वारा लंका के अंदर सारे के सारे देवी देवता कैद में थे, तो जब हनुमान जी आए और हनुमान जी ने सारी लंका में आग लगा दी और सारे देवी देवताओं को फ्री कर दिया, निकलो 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 भागो 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 भागो, तो उनमें से शनि भी थे। तो शनि ने पूछा हनुमान जी से कि आप कौन है जिसने कि सारे देवी देवताओं को रावण के चंगुल से निकाल के भगा रहे हैं, आप कौन है आप। तो हनुमान जी ने कहा मैं हूं श्री राम का भक्त, मेरा नाम है हनुमान। तो फिर शनि महाराज ने कहा कि आप श्री राम के भक्त हैं, मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि आज के बाद जो कोई भी हरि भक्ति के पथ पर चलेगा उसके ऊपर मेरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए जितने भी ये ग्रह हैं इनका प्रभाव उन पे नहीं पड़ता जो कि भगवान के शरणागत हो जाते हैं। जैसे कि पर्सनली स्पीकिंग मेरी जो है आजकल शनि की महादशा चल रही है, एज पर एस्ट्रोलॉजी शनि की महादशा चल रही है। अब मैं किसी को बताता हूं कि मेरी शनि की महादशा चल रही है, वो विश्वास नहीं करते, कहते प्रभु जी आप तो खुश नजर आते हो, आपकी लाइफ में तो कोई दिक्कत हमें नजर नहीं आती, ये कैसी शनि की महादशा है जिसमें कोई व्यक्ति खुश रहता है। तो खुश हम तब रह पाते हैं जब भगवान श्री हरि के चरणों में आ जाते हैं। तो जो भगवान की सेवा करेगा, भगवान का नाम लेगा, तो भले ही उसके प्लैनेट लेफ्ट राइट हो लेकिन फिर भी सब कुछ सही से चलेगा, जस्ट बिकॉज दिस पर्सन हैज टेकन शेल्टर ऑफ कृष्णा, क्योंकि सारे देवी देवताओं की शरण है कृष्णा। तो इसलिए जो कृष्ण के शरणागत हैं उसको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम ये पहनते पुखराज पहनते हैं, नीलम पहनते हैं, गोमेद पहनते हैं, ये सब पहन के सोचते हैं कि इससे हमारे कष्ट दूर होने वाले हैं, इन पत्थरों से आपके कष्ट दूर होने वाले नहीं है, क्योंकि कर्मों का बंधन बहुत ही स्ट्रांग है। कर्मों के बंधन को हम नहीं काट सकते। कर्मों के बंधन की शक्ति ना इस पूरी सृष्टि में सेकंड मोस्ट पावरफुल चीज है। सेकंड नंबर वन कौन? कृष्णा। कृष्णा इज मोस्ट पावरफुल, कर्मा इज सेकंड मोस्ट पावरफुल। अगर सेकंड मोस्ट पावरफुल को काटना है तो फर्स्ट नंबर वन मोस्ट पावरफुल की शरण में जाना होगा। अगर हम उस नंबर वन की शरण में नहीं जाएंगे तो फिर हम कर्मों के बंधन से नहीं बच सकते। ये आएंगे ही आएंगे, येन केन प्रकारेन आएंगे ही आएंगे। अब कुछ को ये डाउट हो सकता है कि ना लेकिन एक्चुअली हम जब अंगूठी पहनते हैं तो हमारे कुछ समय के लिए वाकई में कष्ट कम हो जाते हैं, ऐसा होता है? कष्ट कम हुए कुछ समय के लिए वाकई में ऐसा हुआ? तो क्या ये अंगूठी काम करती है? नहीं, एक्चुअली ये भी आपके प्रारब्ध में था कि आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे। एस्ट्रोलॉजर आपको बोलेगा कि आप इतनी रति का की अंगूठी पहन लो और फिर आप 45,000 रुपए देकर 32 रति का एक इमराल्ड पहनेंगे, ठीक है, और फिर और इसके बाद आपके एक्चुअली कर्मों में थोड़ा सा डाइल्यूशन आना, ये भी आपके प्रारंभ में, अंगूठी की वजह से नहीं, ये भी आपके प्रारंभ में था कि उसके बाद आपके एक्चुअली कर्म कम होंगे, थोड़े समय के लिए आपके दुख दर्द कम होंगे, कर्म रहेंगे वैसे वैसे, दुख दर्द थोड़े कम होंगे। तो हमें लगता है कि ना अंगूठी पहनने से या देवी देवताओं की पूजा करने से ये मेरे कष्ट कम हुए, लेकिन एक्चुअली उनकी पूजा या अंगूठी पहनने से कष्ट कम नहीं हुए हैं, ये वास्तव में ये भी आपका प्रारब्ध ही था। सो कर्म ग्रंथि निबंधनम, कर्मों की ग्रंथि को काटने की शक्ति है भक्ति में। बिना भक्ति के कर्मों के बंधन नहीं कटते, असंभव है ये, असंभव। जैसे मेरे कार्मिक कोड में लिखा है कि मुझको पेट की बीमारी होनी चाहिए, और आज भी एस्ट्रोलॉजर को मेरे को मिल जाता है, प्रभु जी आपकी पेट की बीमारी होनी चाहिए, आपको पेट की बीमारी, लेकिन मेरे को पेट की बीमारी नहीं है। मेरे को पेट की बीमारी थी जब तक मैं कृष्ण प्रसाद नहीं पाता था, जब तक मैंने कृष्ण का प्रसाद नहीं पाया था। भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद आपको मिलता है संडे लफीस में एवरीडे। जब तक मैंने भगवान का लगा हुआ भोग नहीं पाया था, प्रसाद नहीं पाया था, तब तक मेरे पेट में एसिडिटी रहती थी। इसमें मेरे घर में डाइजीन रहती थी, डाइजीन स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, डाइजीन वनीला फ्लेवर, डाइजीन अलग अलग फ्लेवर मैं रखे हुए थे कि भाई खाने के बाद तो एसिडिटी तो बननी ही बननी, चाहे कुछ खाओ। पर पहली बार जब मैं इस्कॉन मंदिर में आया था और मैंने जब भगवान कृष्ण का प्रसाद पाया तो मैं डाइजीन साथ ही रखी थी, और मैंने कहा लेकिन मैं थोड़ा वेट करता हूँ यार, मैं थोड़ा वेट करता हूँ, अभी अभी होगी, अभी होगी, अभी होगी, अभी होगी, अभी हुई नहीं, ये तो पच गया, ये पच कैसे गया, हम आओगे। और फिर मैं घर में गया तो घर में हमारे कब भोग नहीं लगता था, फिर मैंने खाना खाया और ऐसी एसिडिटी, फिर डाइजीन पी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वनीला फ्लेवर शांत करने के लिए, हाँ ये आज फिर से ये रात को फिर वापस आ गया। लेकिन दिन में, दिन के समय तो बढ़िया रहा हिसाब किताब, सही हास। अगली बार फिर से ट्राई किया, अगली बार फिर से जब मंदिर में पाया भगवान का प्रसाद, मैंने कहा अभी एसिडिटी बनी, बनी 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 नहीं बनी, बनी नहीं आने। तो फिर मैंने भक्तों से पूछा आप ऐसा क्या डालते हैं? हमने कुछ नहीं डालते जी, नॉर्मल प्रसाद जैसे बनता है वैसे कुकिंग होती है, बिना प्याज लहसुन के प्योर वेजिटेरियन खाना बनता है। मैंने कहा ठीक है बिना प्याज लहसुन के, मैंने कहा बिना प्याज लहसुन के ट्राई करके देखते हैं फिर। तो घर बिना प्याज लहसुन के बना, उससे भी एसिडिटी बन गई, तो बिना प्याज लहसुन की भी बातें बन रही। तो आप ऐसा और क्या खास करते हैं? तो भक्तों ने बताया कि देखिए हम भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं, जब भगवान कृष्ण को भोग लगाते तो फिर प्रसाद बन जाता है, तो ये प्रसाद होता है वास्तव में। तो ये जो ट्राई करके देखा बार 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 बार, तो ये प्रसाद खाने से मेरे को एसिडिटी नहीं बनती, तो ये पता लग गया भाई मेरे कर्मों में वैसे था कि मेरा पेट खराब रहना चाहिए, लेकिन भगवान कृष्ण के प्रसाद ने मेरा वो प्रारब्ध काट दिया, मेरा वो प्रारब्ध कि मेरे को स्टमक डिसऑर्डर रहने चाहिए वो काट दिया भगवान कृष्ण के प्रसाद ने। इवन टुडे अगर मैं कोई ऐसी चीज खा लूं जो कि भोग नहीं लगी हुई तो मुझको एसिडिटी हो जाती, तो मुझे पता लग जाता कि आज मैंने कुछ गलती से ऐसा खा लिया है जिसका भोग भगवान को नहीं लगा था। तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति है जो कि हमारे कर्म बंधनों को काटती है। लेकिन जो इस बात को नहीं जानता वो देवी देवताओं के पास जाता है, एस्ट्रोलॉजी के पास जाता है। देखिए एस्ट्रोलॉजी जो है ना, एस्ट्रोलॉजी से आप कर्मों को पढ़ सकते हैं लेकिन आप कर्मों को काट नहीं सकते। इसमें रीड ओनली राइट है, राइटिंग का राइट नहीं है इसके अंदर, आप सिर्फ इसमें रीड ओनली ही है, आप पढ़ सकते हैं। कि इतने समय तक आप डिप्रेशन में रहेंगे, इतने समय में आपको बड़ा अच्छा समय रहेगा, इतने समय में आपकी बड़ी लर्निंग रहेगी, इतने समय में आप ग्लैमर में रहेंगे। ये जो है ये चीज़ पढ़ी जा सकती है, लेकिन इसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते। चेंजेस लाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है और वह है भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण की भक्ति। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, लेकिन एक और डाउट भी आता है कि ना शास्त्रों में ऐसा क्यों लिखा है, कोई ऐसे भी शास्त्र है जिसमें देवी देवताओं की पूजा की पुष्टि की गई है? जैसे देवी भागवत है तो उसमें देवी माँ के बारे में बताया गया, शिव पुराण है उसमें शिवजी के बारे में बताया गया है। तो ऐसे शास्त्र भी हमको मिलते हैं जिसमें कि बाकी देवी देवताओं के बारे में गुणगान मिलता है। तो फिर जैसे समझो भाई, सारे के सारे जिसका ग्रंथ है वो अपनी दुकानदारी संभाले हुए हैं। अगर देवी भागवत है तो उसने देवी माँ को संभाला हुआ है, अगर शिव पुराण तो शिव ने शिव जी के बारे में बता, तो जो जिसके बारे में है उसकी दुकानदारी उसने ली हुई है। सो इज इट लाइक दैट? तो जो भी हमारे शास्त्र हैं ये तामसिक लोगों के लिए भी है, कुछ कुछ राजसिक लोगों के लिए हैं, कुछ सात्विक लोगों के लिए भी हैं। तो 18 पुराणों में से जो 6 पुराण हैं उनमें से वो पुराण भी हैं जो कि तामसिक लोगों के लिए हैं, 6 उपपुराण भी हैं जो कि तामसिक लोगों के लिए हैं, 6 ऐसे पुराण भी हैं जो राजसिक लोगों के लिए हैं और 6 उपपुराण भी हैं जो कि राजसिक लोगों के लिए हैं, और ऐसे भी 6 पुराण हैं जो कि सात्विक लोगों के लिए हैं और 6 ऐसे उपपुराण भी हैं जो कि सात्विक लोगों के लिए हैं, और एक ऐसा पुराण भी है जो कि सात्विक राजसिक और तामसिक के परे है, इसको परमहंस संहिता भी बोलते हैं और जिसका नाम है श्रीमद् भागवतम। ऐसे ये है श्रीमद् भगवद गीता, इस तरह से एक और ग्रंथ है जो कि हमारे इसको मिलता है, उसको बोलते हैं श्रीमद् भागवतम। तो भगवद गीता भागवतम उन लोगों के लिए है जो कि प्रकृति के 3 गुणों के परे, प्रकृति के 3 गुणों के परे की बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। तो शास्त्र अलग अलग हैं, जैसे जैसे उपासक होते हैं वैसे वैसे उपासकों के बारे में, उस वैसे वैसे इष्ट देव के बारे में महिमा गाई जाती ताकि कम से कम इसके साथ अभी जुड़ जाए। और ये भगवान की इच्छा से हुआ है क्योंकि भगवान जानते हैं कि अभी मेरे कैबिनेट मिनिस्टर तक तो पहुंच गया है, धीरे धीरे ये मेरे पास भी पहुंच जाएगा। इसीलिए देवी देवताओं वाले शास्त्र भी मिलते हैं, there's nothing wrong। तो वास्तव में ये भगवान की एक बहुत ही सुंदर कॉन्स्पिरेसी है, एक षड्यंत्र है भगवान का हमको जीवात्माओं को भगवान के पास लाने का। तीसरी, भगवान जो है देवी देवताओं की पुष्टि भी करते हैं, देवी देवताओं की पूजा की पुष्टि भी करते हैं। और दूसरी बात यहां पर आ रही है जो प्रभुपाद जी बोल रहे तात्पर्य के अंदर कि हमको नियमों का पालन करना चाहिए है, जैसा कि एक किसी कंपनी का निर्देशक बोले। ऐसा नहीं कि जो वहां के में काम करने वाले क्लर्क हैं उनको थोड़ी रिश्वत दे दी और अपना काम चला लिया, तो रिश्वत देना अवैध कार्य है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहां पर तात्पर्य में कि देवी देवताओं को जो रिश्वत देते हैं, धन देते हैं, तो वास्तव में कार्य जो है अवैध है। जैसे दीपावली के दिन लोग लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं, लेकिन दीपावली दिन क्या हुआ था? हाँ, क्या हुआ था? भगवान राम अयोध्या से लंका वापस गए थे, है ना, है ना, है? भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से लंका पहुंचे थे। किसके किसके मनाते दिवाली? क्योंकि इस दिन भगवान ने रावण को मारा था, है ना, इसलिए दिवाली मनाते ना। हाथ खड़ा करिए। अच्छा, दशहरा क्यों मनाते फिर? अरे धत तेरे, धत तेरे। ओके, श्री कृष्ण जी, प्रभु जी वॉन्ट टू गिव एन इनपुट। यस प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी, दामोदर लीला की जय। भगवान राम वापस आए थे भाई, बिल्कुल सही बात है। ओके, जय हो, थैंक यू प्रभु जी। हाँ जी, ओके, वंडरफुल। तो लक्ष्मी गणेश की पूजा का क्या कनेक्शन बना फिर भाई? प्रभु जी ने हमें इतने सारे डिवाइन रीजंस दिए, लक्ष्मी गणेश की पूजा का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन एक लॉजिक है, क्योंकि हमें इस दुनिया में दो चीजें चाहिए, एक रोकड़ा, दूसरा गुड लक। रोकड़ा कौन देगा? रोकड़ा 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 लक्ष्मी, लक्ष्मी देगी रोकड़ा। अच्छा, और गुड लक, गुड लक कैसे आएगा? गुड लक गणपति बप्पा, गणपति बप्पा से मिलेगा। नहीं तो वैसे गौरी शंकर के पुत्र और नारायण की पत्नी के बीच में दूर दराज तक कोई रिश्ता नहीं है, चाचा मामा भतीजी कुछ नहीं लिखते एक दूसरे के। पर लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान देखो हमें ना दो चीज चाहिए, एक तो है रोकड़ा, दूसरा हमें गुड लक चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए जो है दीपावली के दिन सीताराम की पूजा कोई करता नहीं, किसी भी घर में चले जाओ। जबकि सीताराम वापस आए, लंका से वापस आए हुए, तो सीताराम की पूजा करनी चाहिए, उसे रामायण पढ़े। उस दिन लोग खेलते हैं हाई स्टेक जुआ, वही आते दिवाली का दिन है, दिवाली में हाई स्टेक जुआ खेलना चाहिए। अपने रामायण में लिखा हुआ ऐसा, जैसे ही सीताराम अयोध्या में प्रवेश किया, सारे अयोध्या वासी उत्सुकता पूर्वक कैसीनो की ओर भागे। कैसीनो की ओर भागते हुए सभी अयोध्या वासियों ने हाई स्टेक जुआ खेला और इस प्रकार से दीपावली का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। ऐसा है रामायण में, रामचरितमानस में लिखते हूं तुलसीदास जी कि सारे के सारे जो अयोध्या वासी थे वो कैसीनो में पत्ते खेलने के लिए गए, क्योंकि सीताराम वापस आ गए, अरे पत्ते लगाओ यार, पपलू खेले थोड़ा सा, ऐसा हुआ गया। पर लोग दीपावली के दिन जो है हाई स्टेक जुआ खेलते हैं, पपलू खेलते हैं, थ्री पीस खेलते हैं, कोर्ट पीस खेलते हैं, तीन दो पांच खेलते हैं। काइकू भैया कहां लिखा है वे? क्योंकि हमें इस दुनिया में एक्चुअली हमें एक्चुअली देवी देवताओं के भक्त, देवी देवताओं के भक्त नहीं है वो, भक्त का मतलब हरि भक्त। देवी देवताओं के भक्त होते हैं बिजनेसमैन, इसीलिए देवी देवता भी उनको बिजनेसमैन की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे अगर एक बच्चा चला जाए अगर एक शॉपकीपर के पास कि अंकल एक ना 7 o'clock का ब्लेड दे देना प्लीज, भाई पैसा दे 7 o'clock का ब्लेड ले, दे दिया ब्लेड, ये पूछता नहीं क्या करेगा उसका, दे दिया। पिताजी के पास जाएगा, पिताजी ब्लेड चाहिए था 7 o'clock का, तो बेटा तुम क्या करोगे इसका? पापा बोला मेरे को बॉडी में ड्रॉइंग बनानी थी ना, मैं ब्लेड से लिखूंगा आई लव यू रीना, यहां पर उनको ड्रॉइंग बनानी है ब्लेड से 7 o'clock के। तो पापा कहेंगे अरे मेरा बच्चा ये ले ब्लेड ले ले, पापा ना उसको रबड़ का ब्लेड देंगे, 7 o'clock का ब्लेड नहीं देंगे। और फिर रबड़ के ब्लेड से लिखता रहे यहां पर आई लव यू रीना, आई लव यू रीटा, आई लव यू सैन्यूरीटा, जो लिखना लिखता रहे बेटा, लेकिन उसे घाव नहीं होंगे। तो भगवान जब पूजा, भगवान जब हमारी इच्छा पूरी करते हैं तो इस तरह से इच्छा पूरी करते हैं कि हमारी भौतिक इच्छा रहती नहीं, कहते यार ड्रॉइंग बनाई है, ड्रॉइंग तो कुछ बन नहीं रही यार, क्या है यार छोड़ना। तो इसीलिए भौतिक इच्छा भी हो तो किसके पास जाना चाहिए? भगवान के पास जाना चाहिए, देवी देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए। तो जो देवी देवताओं की पूजा करने के लिए आती है ये बेसिकली अपनी बिजनेस मेंटालिटी के लिए आते हैं, ये देवी देवताओं के भक्त देवी देवताओं के भक्त नहीं होते, देवी देवताओं के भक्त नहीं होते। इसे बदल भी देते हैं अपना कि भाई हमने तो यार वैष्णो देवी गए थे, हमने वैष्णो देवी से बोला भी था मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, देख मां मेरी मुरादे पूरी करेगी तो ही हलवा बांटूंगी, एंड डोंट एक्सपेक्ट पूरीज, सिर्फ हलवा ही बांटूंगी, देख मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। तो एक्चुअली देवी देवताओं के भक्त भी इनके भक्त नहीं होते, ये अपने स्वार्थ के भक्त हैं, अपनी इच्छाओं के भक्त हैं, ये देवी देवताओं के भक्त भी नहीं है, देवी देवताओं के भक्त उनके भक्त नहीं होते। इसलिए अपना डिपार्टमेंट जिंगे लेते हैं, कहते हम तो वैष्णो देवी गए थे, हमने बोला हमका हमारा बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, तीन बेटियां हो गई, चौथी भी बेटी हो गई है, यानी कि ना वैष्णो देवी में जाकर ना काम नहीं बनता हमारा। तो फिर दोस्त बोलेगा अरे यार तू यहां चल सेक्टर 30 में, वहां पर साईं बाबा का मंदिर है, साई राम साई श्याम कर, देख साईं बाबा इतने दयालु हैं, बाबा जी से ना रोते हुए आते हैं हंसते हुए जाते हैं, ऐसा क्या जाएंगे? डिपार्टमेंट चेंज, डिपार्टमेंट चेंज, बोलो साई राम साई श्याम, जग में है दो सुंदर नाम, चाहे साई राम कहो या साई श्याम, चेंज हो जाता है। तो एक्चुअली देवी देवताओं के भक्त देवी देवताओं के भक्त नहीं होते, अपनी इच्छाओं के भक्त हैं, ये किसी के प्रति वफादार नहीं होते, ये अपने स्वार्थ के प्रति वफादार होते हैं बस। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। देखो एक तो भाई क्या है सुख संपत्ति घर आए, ठीक है, दूसरा क्या कष्ट मिटे तन का, भाई तन हमारा बढ़िया रहे ताकि भोग कर सके हम लोग। तो इसीलिए प्लीज ओ देवी देवता लिसन टू माय प्ली, मेरी प्रार्थना सुनिए। तो जो देवी देवताओं के वास्ते में जो भक्त होते हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और देवी देवताओं से अगर इच्छा पूरी हो भी रही है तो भगवान कह रहे हैं कि असल में मैं ही पूरी करता हूं, अगर कैबिनेट मिनिस्टर से अगर आपकी इच्छा पूरी हुई है तो प्राइम मिनिस्टर ने उसको एम्पावर किया है तभी इच्छा पूरी कर पाया वो। लेकिन अगर आपने कैबिनेट मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर मान के उससे इच्छा पूरी कर भी दी तो भगवान आखिरी वर्ड कह रहे हैं यजन्ते अविधि पूर्वकम्, ऐसी जो पूजा है वो अविधि पूर्वक है, यानी त्रुटिपूर्ण है, गलत तरीका है वास्तव में वो। तो इसीलिए जो है भगवान कह रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा करने वाले जो है वास्तव में अल्पज्ञ होते हैं, कम समझदार होते हैं वो। तो इसका मतलब ये नहीं कि देवी देवताओं की हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और देवी देवताओं की जो रिस्पेक्ट करने का मतलब ये भी है ऑफकोर्स कि उनको भक्त मानना, भक्त बन के उनकी रिस्पेक्ट करना। हम भगवान के आगे और भगवान के भक्तों के आगे दोनों के आगे शीश नवाते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ भगवान के आगे कि भाई भगवान को मानेंगे, हमको पता लग गया हम संडे लफीस में गए थे, संडे लफीस हमारा फंडा क्लियर हो गया, कृष्ण भगवान है, बाकी हो था क्या देवी देवता, अरे हम कृष्ण के उपासक है भाई, ये SC ST के आगे हम अपना सर नहीं झुका दें, ऐसा नहीं सोचना हमें। ये जो देवी देवता है ये भी भगवान के भक्त हैं। तो जिस तरह से भगवान को हम नमस्कार करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उस तरह से डिवोटीज को भी कहते हैं हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, रिस्पेक्ट। लेकिन भजन सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का करना चाहिए, रिस्पेक्ट तो सभी करनी चाहिए, राइट। सबको अपनी पत्नी नहीं मानेगा पति कि भाई हम तो देखिए सभी को अपनी पत्नियां मानते हैं, ऐसे आदमी करेक्टरलेस आदमी, राइट। अपनी पत्नी से वो प्यार करता है, बाकी माताओं को रिस्पेक्ट करता है, हरे कृष्णा माता जी, राइट। या माता जी जो हमने पति को तो पति मानती हैं, ऐसा नहीं कि भाई सारे पुरुष पति तो हैं अपने, ऐसे भाई ऐसे तो गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, राइट। अपने पति को तो भाई वो स्नेह करती है और बाकियों का आदर सम्मान करती है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण है वो हमारे पति हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे सब कुछ हैं। बाकी देवी देवताओं की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, देवी देवता एज ए डिवोटी। और किसी डिवोटी को अगर भगवान बोले तो उसको खुशियों की दुख होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोले कोई अमोघ लीला प्रभु आप भगवान हैं, आपके चरण धो धो के हम पीना चाहते हैं, आप तो भगवान हैं, और अगर हम ये एज्यूम करें कि मैं वाकई में एक अच्छा भक्त हूं, तो ये सुन के मुझे खुशी होगी या दुख होगा? दुख होगा। क्या मुझे क्यों भगवान मान रहे हैं ये लोग यार, इनको भगवान को भगवान मानना चाहिए। आई एम नॉट गॉड, आई एम अमोघ लीला दास, आई एम अ सर्वेंट, आई एम अ डिवोटी। और अगर भक्त को बोला जाए कि श्याम सुंदर प्रभु व्हाट अ डिवोटी यू आर यार, सच एन इनक्रेडिबल डिवोटी, यू आर सच अ गुड डिवोटी, तो श्याम सुंदर प्रभु खुशी होगी कि नहीं होगी? होगी। यस रोजी, थैंक यू रोजी, माय ब्लेसिंग्स, यस थैंक यू वेरी मच। तो भक्त को भक्त बोलो तो भक्त को खुशी होती है, भक्त को भगवान बोलो भक्त को अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा मैंने सोचा चाहिए कि यार अभी तो हम इस्कॉन गए थे, इस्कॉन में जाके पता लग गया कि कृष्ण परम भगवान है, अब मेरे जो है पुराने वाले देवी देवता गुस्से हो जाएंगे, कहते हैं अच्छा बच्चू संडे लफ्फीस में जाकर तूने पार्टी बदल ली, तूने अब ले मेरी गदा खा तू, ऐसा करेंगे क्या देवी देवता? नहीं, बल्कि देवी देवता खुश होते हैं कि भैया हम भक्त हैं, हमको भक्त बोलता है, जो भगवान है उनको भगवान बोलता है, अब जाके इसे अकल ठिकाने आएगी। तो इसीलिए कोई निस्वार्थ भाव से देवी देवताओं के पास जाता है, देवी देवता उसको धीरे धीरे भगवान कृष्ण के पास भेज दे। भाई निस्वार्थ भाव वाले तो कृष्ण के पास जाने चाहिए, स्वार्थी वाले आ जाओ उनका हम निपटारा कर देंगे, उनकी कुछ सांसारिक इच्छाएं पूरी कर करा के, बट एक्चुअली सब वी शुड एक्सेप्ट कृष्ण एज एवरीथिंग। इवन अगर कोई भौतिक इच्छा भी है तो भी उसके लिए देवी देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए, भौतिक इच्छाओं के लिए भी हमें कृष्ण के पास ही जाना चाहिए, देवी देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। मुझे याद है मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो ना हमारे कंप्यूटर साइंस में एक तो एक सब्जेक्ट अकाउंट्स का भी था, अकाउंट्स में तो हमारे बहुत ही हालत खराब थी, मैं क्रेडिट को डेबिट में डाल दिया करता था, डेबिट को क्रेडिट में डाल दिया करता था, बैलेंस शीट में 5,000 एक लाख रुपए के डिफरेंस आया करते थे। तो मेरी सिस्टर ने बोला था भाई कुछ बन जाइए, अकाउंटेंट मत बनना, कंपनी तो बर्बाद निश्चित है। तो उसने ना मेरी सिस्टर ने ना मेरे को काफी तैयारी कराई अकाउंट्स की, बहुत ही तैयारी कराई, उसने पूरे जान ठोक दी, मेरे को कुछ समझ नहीं आता, मैं कहा चल जो भी है देखी जाएगी आज पेपर में, और मैं पेपर अटेम्प्ट करके आया वापस, और मैंने अपनी सिस्टर को बताया मैंने इसमें ये किया है, इसमें ये किया, इसमें ये किया, इसमें ये किया। मेरी सिस्टर ने बोली देख बुरा मत मानना तू फेल है इसके अंदर। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं एक और सेमेस्टर नहीं पढ़ सकता इसको बाबा। फिर मैं राधा पार्वती मंदिर गया था, मैंने कहा भगवान भक्त के अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज मैं एक भौतिक इच्छा लेके आया हूँ, मेरे को अकाउंट्स में पार करा दो, मैं एक और सेमेस्टर इसको नहीं पढ़ पाऊंगा भगवान। 100 में से 50 नंबर पास थे, मेरे 51 आए। तो साफ साफ भगवान ने संदेश दिया, बेटा तुम फुलटू फेल था, मैंने ही तेरे को पास कराया। और उसके बाद से फिर हो गया भाई, आज के बाद कोई बहुत इच्छा नहीं मांगी, आज मांग ली है अकाउंट्स को पार कराने की, आज के बाद नहीं मांगेंगे। तो अगर कोई गलती से भौतिक इच्छा होगी तो देवी देवता के पास ही जाना चाहिए, हमें कृष्ण के पास जाना चाहिए। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण को अपना आराध्य बनाएं, उनको उन्हीं का भजन करें, ठीक है, बाकियों का आदर सम्मान करें। इस प्रकार की पूजा में जो है वो विधि पूर्वक है, अविधि पूर्वक नहीं है। ओके, तो हम यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? यस वरुण। तो इनका सवाल है कि भाई ये लक्ष्मी गणेश की पूजा दो, हमारे पिताजी, दादाजी, परदादाजी, लक्कड़ दादाजी सबके सब करते आ रहे, तो ये प्रथा क्या शास्त्रों में कहीं से है या कब कैसे शुरू हुई है? ये शुरू हुई हमारी स्वार्थी इच्छाओं से। स्वार्थी इच्छाएं कब से हमारे में? जब से हमारे में स्वार्थ है तब से ये पूजा शुरू हुई। सिंपल एज दैट। तो इसीलिए हमारे पिताजी भी अज्ञानता में थे, दादाजी भी अज्ञानता में थे, परदादाजी भी अज्ञानता में थे, लक्कड़ दादाजी भी अज्ञानता में थे, इसीलिए सबके सब जो है अज्ञानता पूर्वक पूजा करते आ रहे हैं। पर दीपावली मीन्स सीताराम कमिंग बैक। तो इसलिए देवी देवताओं की पूजा, गणपति अप्पा मोरिया, अभी गणपति अप्पा मोरिया नहीं बोलते, अभी बोलते हैं गणपति अप्पा मोर दिया और दे, गणपति अप्पा तेरी थाली में इतने लड्डू, इतने लड्डू थोड़ी खाएगा, तो लड्डू हमको भी दे, गणपति अप्पा मोर दिया, मोर दिया देना और दे, और दे, और दे। सो दैट इज आवर एटीट्यूड ऑफ गणपति अप्पा और लक्ष्मी गणेश। यस यस प्रभु। हरे कृष्णा। वेरी गुड क्वेश्चन। पहला सवाल कि पहली जो पूजा होती है गणेश जी की होती है, ऐसी गणेश जी की पूजा नहीं होती, पहली पूजा विष्णु जी की होती है, पहली आहुति किसी भी यज्ञ में भगवान विष्णु को दी जाती है, उसके बाद फिर गणेश जी आते हैं। अगर हम ध्यान से मंत्र सुने और किसी प्रामाणिक ब्राह्मण से सुने तो पहला भोग, पहली ऑफरिंग विष्णु को या कृष्ण को जाती है एक्चुअली, उसके बाद फिर गणेश जी और बाकी देवी देवता आते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल कि क्या हम भगवान कृष्ण की पूजा के साथ साथ क्या किसी देवी देवता की पूजा कर सकते हैं? हम देवी देवता की पूजा उनको भक्त मान के कर सकते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हुए कर सकते हैं कि हमको भगवान, हमको देवी देवता जो है आप ये आशीर्वाद दें कि हमें भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो। ऐसे माँ सरस्वती से प्रार्थना कर सकते हैं, हे माँ सरस्वती मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं भगवद गीता समझ सकूं, क्यों नहीं। हम शिवजी से प्रार्थना कर सकते हैं कि शिवजी आप अपने त्रिशूल से मेरा अहंकार नष्ट कर दीजिए ताकि मैं भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति कर सकूं। तो देवी देवताओं से हम इस तरह का आशीर्वाद तो मांग सकते हैं, भाई भक्त है ना, डिवोटी से नहीं मांगते, प्रभु जी कैन यू प्लीज प्रे फॉर मी, आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे कि मैं अच्छा भक्त बन सकूं। तो इस तरह से देवी देवताओं से भी हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हे देवी देवता प्लीज हेल्प मी आउट। देवी देवताओं से ये समझ के प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि हो सकता है ये इच्छा मेरी कृष्ण पूरी ना कर सके तो, राइट। अगर किसी के पास नदी है ना उसको कुएं के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो काम कुआं करता है वो नदी कर सकती है, बल्कि नदी ऐसे भी काम कर सकती है जो कुआं भी नहीं कर सकता। जैसे कुएं में कोई एक ही काम कर सकते हैं, या तो जानवरों को नहला सकते हैं, या उसमें कपड़े धो सकते हैं, या उसे पानी पी सकते हैं, लेकिन बहती हुई नदी से तो कोई पानी भी पी सकता है, कपड़े भी धो सकता है, जानवरों को नहला भी सकता है, इवन दैट नदी हमेशा प्योर है, तो सारे के सारे काम नदी से हो सकते हैं, तो कुएं की आवश्यकता ही नहीं है, राइट। तो इसीलिए जो हमें सेपरेटली अलग से देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि यहां पर प्रभुपाद जी बड़ी अच्छी एनालॉजी दे रहे हैं कि अगर जड़ में पानी दोगे तो सारा का सारा जो वृक्ष है अपने आप खिल उठेगा, पेट में खाना डालोगे सारा शरीर अपने आप हृष्ट पुष्ट हो जाएगा, प्रभुपाद जी बताए ना। तो इस प्रकार से जो है हमें और किसी देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें नदी आ गई ना कृष्ण भक्ति की, बस। तो घाट घाट का पानी पी के बदहजमी करने का क्या फायदा, नदी का फ्रेश पानी पियो, नरिशिंग प्योर। ओके, और किसे वो सवाल है? यस, ओके, माताओं की साइड से यस। यस, बड़ा अच्छा सवाल कि क्या देवी देवताओं को अर्पित प्रसाद हम स्वीकार कर सकते हैं? एक्चुअली देवी देवताओं को कोई प्रसाद होता ही नहीं है, क्योंकि देवी देवता भगवान के भक्त हैं और भक्त बिना भगवान को भोग लगी हुई चीज खाता ही नहीं है। जैसे कि हनुमान जी को मंगलवार को जो बूंदी चलाते हैं ना, हनुमान जी इस बूंदी की ओर देखते भी नहीं है, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ श्री राम का प्रसाद स्वीकार करते हैं। जिस चीज को सीताराम ने स्वीकार किया है उसको हनुमान जी स्वीकार करते हैं। आपने हलवाई से कह दिया जी 21 रुपए की बूंदी दे दीजिए, एक आध ना उसमें बर्फी भी डाल देना, और पंडित जी ने लिफाफा खोल गए, और जी कैसे हैं सब, घर पे ठीक ठाक है? हैं बिटिया रानी ठीक है? ठीक है ठीक है, आते नहीं हो, बड़ा टाइम हो गया आपको, महीने में महीना भर हो गया आप लोग, ठीक है। और फिर बंद किया उसने, प्रसाद हो गया जी। हनुमान जी ने इस बूंदी को देखा भी नहीं। हमारे जैसे नौसखिय भक्त, हमारे जैसे हनुमान जी का हमारी भक्ति कुछ है, डब्बा कुछ भी नहीं है। हमारे जैसे नौसखिया भक्त जब भगवान को बिना भोग लगाए नहीं खाते, तो हनुमान जी जैसे भक्त क्या बिना भोग लगे चीज खाएंगे? तो देवी देवता जो होते हैं ना, इनका असल प्रसाद प्रसाद होता नहीं, वो देखते भी नहीं इसको। अंटिल अनलेस इसको आपने पहले भगवान को अर्पित किया हो, उसके बाद देवी देवताओं को दिया हो, तो देवी देवता इसको स्वीकार करते प्रसाद के रूप में। नहीं तो आपने सीधे मिठाई का डब्बा लेके आए कि भाई काजू की बर्फी, ये बर्फी, खोए की बर्फी देवी देवता को चढ़ाई, देवी देवता देखते भी नहीं इसको। अरे क्या नकली माल है, तो भगवान को भोग ही लगाया इसको। तो जिस चीज का भोग लगाए नहीं उसको तो खाना ही नहीं चाहिए। तो ऐसी प्रसाद का मतलब हरि प्रसाद, हरि का जो प्रसाद है जो वो पाया, उसके बाद देवी देवताओं ने पाया जो कि उनके भक्त हैं, तो वो बन गया महा महा प्रसाद। ऐसा प्रसाद आप पा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई लेके आता हमारे पास कि भाई हम वैष्णो देवी से लेके आए, ऐसे में हमको ले लेना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति की श्रद्धा खराब ना हो, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, उसको फिर जो है किसी पौधे में डाल देना चाहिए, अच्छे पौधे में जहाँ पर किसी पाँव आना पड़े, ठीक है ना, इधर बस खाने की वस्तु है किसी पौधे में डाल दें ना ऐसे। पर वास्तव में उसको भी स्वीकार नहीं कर सकते हम देवी देवताओं के प्रसाद को भी, क्योंकि वास्तव में देवी देवताओं का प्रसाद कुछ होता ही नहीं है, नहीं ले सकते उसे। अरे ध्यान ले लो भगवान पाले कि तेरे लिए वैष्णो देवी से आया है, खा ले इसको, ऐसा कोई हमको दे अगर हम खा देंगे, ले खा ले, हम कहेंगे कुत्ता समझ रखा है, खा ले। सो दैट पीस हमारे भाई आ गया तुम, ओ कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, हो नहीं तो ऐसा नहीं करना होता, ठीक है। अफकोर्स अगर जो हम ट्रैवलिंग में करते हैं दैट इज अनदर थिंग, लेकिन ये तो किसी ने दिया ना हमें, तो इसको लेके स्वीकार कर लो, थैंक यू वेरी मच। और उसको जो है अलग से जाके जब व्यक्ति चला गया तब जो है किसी पौधे में डाल दें इसको, ठीक है। लाइक दैट यस, दो तरह के लोग होते हैं, एक तो होते हैं जो कि ना सुनने वाली हालत में नहीं है, जो लोग सुनने की हालत में उनको प्रीचिंग नहीं करनी चाहिए, हमें बोले अरे सब एक ही होता है जी, और क्या निकल रहा है वो, उसको रोके नहीं तू सुन सुन, मैं तुमको बताता हूँ, चल नया टाइम नहीं है, चल फोकट में क्या कहा खाली पीली टाइम वेस्ट कर जा, ऐसे व्यक्ति को प्रीचिंग नहीं करनी चाहिए। पर अगर वो बोले देखिए हमारा तो ऐसा मत है कि सब एक ही होते हैं, तो मैं समझा सकते हैं कि देखिए एंड देन वी कैन ट्राई टू एक्सप्लेन कि देखिए प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं एक ही होते हैं, उनके मिनिस्टर कैबिनेट में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, है ना, अरुण जेटली, स्मृति ईरानी, ये मिनिस्टर्स हैं, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, है ना, शास्त्र में लिखा है, क्या लिखा है वो बता सकते हैं। तो जो सुनने की हालत में हो उसको समझाना चाहिए, जो सुनने की हालत में ना हो, जैसे हमसे एक आदमी मिला था, कहते हैं आपके मंदिरों में सिर्फ भगवान कृष्ण की ही क्यों पूजा होती है, बाकियों ने क्या बिगाड़ा आपका है? अब ये सुनने की हालत नहीं। तुमने कहा देखो यार हमने पर्चियां निकाली थी, पर्चियों में हमने 33 करोड़ देवी देवताओं का नाम लिखा कि जिसका नाम निकला आएगा उसकी पूजा कर लेंगे। लकी डे फॉर कृष्णा, कृष्ण का नाम तो तो बंदा बोले यार ये क्या बात हुई, मतलब ठंडा हो गया। जब ठंडा हो गया फिर समझाया उसको, जब तिल लाया सुनेगा वो क्या करे यार, लकी डे फॉर कृष्णा, पर्ची निकाली कृष्णा भाई, कृष्ण की पूजा करो, पर्ची 16 पर्ची ढपने कृष्ण का नाम लिखा। सो दैट इज यू शुड सी हु इज इन अ कंडीशन टू हियर, हु इज नॉट इन अ कंडीशन टू हियर, एंड देन अकॉर्डिंगली वी कैन प्रोसीड लाइक दैट। ठीक है, और किसी को सवाल? यस ओके, आई कम टू यू। यस टू हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण, धन्यवाद जी। मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि हम सुनते कि कई लोग ये बोलते हैं कि कुल देवता है हमारे या इष्ट देव है, तो ऐसे क्या वेदों में ऐसा कुछ मेंशन है कि इष्ट देव कुल देव होते हैं? दूसरा प्रश्न यह है कि काफी बार देखा गया कि लोग वैसे किसी देवियों से भक्त नहीं होते हैं, लेकिन हमारी वर्धनाएं ऐसी चल रही है जैसे दस लोग का व्रत है, शीता माता का भी व्रत आ गया है,
कुल के देवता भी अगर ना दो तरह से लोग स्वीकार करते हैं, एक शास्त्रों के आधार पे, एक मनमाने तरीके से। मनमाने तरीके से वन कैन चूज एनी वन। जो लोग शास्त्रों के ऊपर बेस अपने इष्ट देव चुनते हैं तो वो भगवान विष्णु या कृष्ण के अवतारों में से किसी को चुनेंगे कि भाई हमारे इष्ट देव जो है वो है ग्रीव है, हमारे इष्ट देव भगवान नरसिंह देव है, हमारे इष्ट देव भगवान श्री राम है, हमारे इष्ट देव श्री गौरंग महाप्रभु हैं। शास्त्रों के ऊपर आधारित वो भगवान के ही भगवान को या उनके किसी अवतार को स्वीकार करेंगे। ओके, लेकिन जो शास्त्रों के आधार पर स्वीकार नहीं करते वो किसी को चुन लेते हैं कि हमारे इष्ट देव है बाबा घोरक धंधा, हमने जो है इन्हीं को भोग लगाते हैं। अब बाबा घोरक धंधा जो है घोरक धंधा ही है सारा सारा, तो ऐसे में क्या पूजा करके कुछ होना तो है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए किसी बाबे को शाबे को चुन लिया किसी ने इष्ट देव, तो भाई वो खुद ही खाए उसको, हम तो नहीं खाएंगे उसको। वी कांट टेक प्रसाद वॉट एक ऑफरिंग फ्रॉम सच ए पर्सन। सो दैट इज ये कुल देवता वगैरह का होता है केस, पर कुल देवता हाउ समवन हैज चोजन, उसे पूछना जी आपके इष्ट देव है कौन, लेकिन और आपने किस आधार पर उनको इष्ट देव चुना आप बताना चाहेंगे, थोड़ा हमको बताया हम अज्ञानता में तो पता लग जाएगा। Like that. And then we can treat accordingly. Second सवाल ये आता है कि अब ये शीतला माँ और कई सारी माँ हैं, ठीक है, अब इनकी पूजा जो है हम स्वीकार हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, राइट? ये सवाल आता है। अब कोई कई सारी देवियां हैं और देवियों का हमें सम्मान करते हैं, लेकिन प्रसाद और भजन तो हम भगवान श्री कृष्ण का ही करते हैं। और कुछ कुछ तो ऐसे भी व्रत है जिसमें जो कि किसी देवी के वो है नहीं, लेकिन वो देवी के व्रत रखे जाते हैं, जैसे कि हर शुक्रवार को लोग संतोषी माँ का व्रत रखते हैं। संतोषी माँ नाम की कोई माता ही नहीं है एक्चुअली। अभी संतोषी माँ आई कहां से? एक मूवी आई थी जय संतोषी माँ, और उसमें डिस्क्लेमर लिखा था प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने, यहां इसमें जो जय संतोषी माँ जो है काल्पनिक पात्र है, इसको किसी इसका किसी भी रियल वर्ल्ड के किसी भी व्यक्ति से लेना देना नहीं है, और ये ऐसा इसलिए किया है ताकि कोई व्यक्ति ऑफेंडेड फील ना करे। तो जय संतोषी माँ नाम की मूवी आई थी, जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ आती हैं, दुष्टों का नाश करती हैं, और उस बार से उसके बाद जो है लोगों ने शुक्रवार के संतोषी माँ के व्रत में शुक्र भी शुरू भी कर दिए, जबकि संतोषी माँ जैसी कोई है नहीं। एक बार इंडिया पाकिस्तान का फाइनल था तो सबने कहा यार अरे यार ये तो पाकिस्तान जीतेगी, आज तो जुम्मे का दिन है, जुम्मे के दिन तो ये लोग नमाज पढ़ के आएंगे और यार पाकिस्तान जीतेगी। तो इंडिया में कई लोगों ने सोचा अरे यार तो क्या हुआ, फ्राइडे को हमारा संतोषी माँ का व्रत होता है, हम संतोषी माँ का व्रत रखेंगे कि इंडिया जीतेगी, पाकिस्तानी को रखना है वो मुल्लों को रखने दो, जुम्मे के दिन हम लोग जो है संतोषी माँ को व्रत रखेंगे। और हुआ का इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, इंडिया जीत गई। देखा संतोषी माँ का व्रत काम करता है, ये इंडियंस का हाल है, ये इंडियंस का हाल है कि क्रिकेट में कौन जीतता है इससे उनकी श्रद्धा बनती है, कौन जीता, इंडिया जीती पाकिस्तान जीता। सो दैट मींस यू नो आजकल क्या कुछ भी निकल के आता है, आज लोग किसी की पूजा कर रहे हैं। तो इसीलिए देवी देवता जो नकली हैं, जो कभी एग्जिस्ट नहीं करते, उनकी पूजा करना तो ऑफकोर्स गलत है ही। अगर जो देवी देवता हैं भी, उनकी पूजा या वर्शिप या मान सम्मान उनको भक्त के रूप में करना चाहिए, उनके आगे शीश नवाना चाहिए, सर झुकाना चाहिए, जमीन पे लेटकर प्रणाम भी करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान नहीं मानना चाहिए, ना ही उनकी पूजा करने की आवश्यकता है। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी हम गणेश जी की पूजा कर सकते हैं क्या, क्योंकि हम लोग फंड रेजिंग कर रहे हैं, तो फंड रेजिंग करते हुए हम गणेश जी की पूजा कर लें। प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, तुम गणेश जी की पूजा कर सकते हो, प्रोवाइडेड तुम हर महीने मेरे को $1,00,000 भेजोगे मंदिर बनाने के लिए, बुक पब्लिशिंग के लिए, शास्त्र को पब्लिश करने के लिए, मुझको लक्ष्मी की आवश्यकता है। तुम अगर मुझे हर महीने $1,00,000 दोगे तो तुम गणेश जी की पूजा कर लो, नहीं तो कृष्ण की पूजा करके जितना पहले चुपचाप शांत रहो। ठीक है प्रभुपाद जी, समझिए $1,00,000 उस समय। तो प्रभुपाद जी अपने लिए नहीं मांग रहे थे, कृष्ण के लिए मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने ये फंडा क्लियर कर दिया कि हमें देवी देवताओं की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है वास्तव में, चाहे माँ शीतला हो, चाहे माँ गर्मी हो, कैसी भी हो, तो चाहे शीतल मौसम हो या गर्म मौसम हो, हमें भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। श्रीमान नारायण दास यादव प्रभु के घर में उनकी बेटी की शादी के उपलक्ष्य में 11/7/2015 यानी आने वाले शनिवार शाम 6 से 8 बजे हरिनाम संकीर्तन व डिनर प्रसादम उनके घर के पास वसंत अपार्टमेंट में पंडाल प्रोग्राम है। ये शाम स्वीट के सामने ओल्ड दिल्ली रोड पर है। सभी सपरिवार सहित निमंत्रित हैं। कृपया भगवान के प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएं व बच्ची को आशीर्वाद दें। ठीक है जी, डिटेल्स हैं, आप इनसे ले सकते हैं। और किसी को सवाल है? यस यस,
हरे कृष्ण। आपने कहा कि इच्छाएं भी जो है उनकी भी कृष्ण को ही अप्रोच है, लेकिन अगर इच्छा ना हो पर कोई डाउट होता है
तो डाउट मत करो, सिंपल डाउट मत करो कि भगवान आपको जो देना है मुझको दीजिए, जो मेरी भक्ति के लिए अच्छा मुझको दीजिए, जो मेरी भक्ति के लिए अच्छा नहीं है मुझे मत दीजिए, इवन मेरी इच्छा भी हो, क्योंकि भगवान हमको वो देते हैं जिसकी हमें जरूरत है। कभी कभी हमारी जरूरत गलत होती है, एक्सक्यूज मी, कभी कभी हमारी इच्छा गलत होती है, हमारी जरूरत कुछ और होती है। हमें हमारे हमें क्या चीज मिलनी चाहिए, वो चीज जिसकी मुझे इच्छा है या वो चीज जिसकी मुझे जरूरत है? हाँ, क्या जोर से, जिसकी मुझे जरूरत है। तो भगवान से मुझको ये मांगना चाहिए कि भगवान मुझको वो दीजिए जिसकी मुझे वास्तव में जरूरत है, और उसके बाद अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी तो मैं मुझे यही मानना चाहिए कि यानी कि ये चीज मेरी जरूरत नहीं थी, ये चीज मेरे लिए हानिकारक थी, इसीलिए इच्छा पूरी नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में जब इच्छा पूरी होगी तो हम कहेंगे थैंक यू कृष्णा, आपने मेरी इच्छा पूरी की। और अगर ऐसी स्थिति में मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो भी हम कहेंगे थैंक यू कृष्णा, ये आपने गलत सलत डिजायर मेरी पूरी नहीं की। सो दैट मीन्स हम दोनों ही स्थिति में भगवान के साथ रहेंगे। अदरवाइज जैसे हमने सुना ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का हेका होए। कुछ लोग सुख में सुमिरन करते हैं, दुख में नहीं करते हैं, और इसका उल्टा भी है, कुछ लोग दुख में सुमिरन करते हैं, सुख में भूल जाते हैं भगवान। नहीं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमें भगवान को हमेशा याद करना चाहिए, राइट? तो इसीलिए चाहे इच्छा पूरी हो चाहे इच्छा पूरी ना हो, इच्छा पूरी हुई थैंक यू कृष्णा फॉर फुलफिलिंग माई डिजायर, और अगर इच्छा पूरी नहीं हुई थैंक यू कृष्णा फॉर नॉट फुलफिलिंग माई डिजायर, ऐसा सोचना चाहिए, बजाय कि भगवान पे डाउट करने के हमें अपने डाउट पे डाउट करना चाहिए और अपने डाउट को किनारे करना चाहिए। इधर रुके, गॉड इज वन ऑफ द भगवान एक है जिनका नाम कृष्ण है,
लेकिन यही होता है कि अगर हम कॉलेज में या
हम सबके भगवान एक ही हैं, उनका नाम कृष्ण है, कृष्ण का नाम अल्लाह भी है और कृष्ण का नाम जो है जेहोवा भी है, कृष्ण का नाम क्राइस्ट भी है, ये भगवान कृष्ण ही है। इसलिए कृष्ण का नाम हिंदूनाथ नहीं है, कृष्ण का नाम क्या है, क्या कौन है आप यहाँ पर, जगन्नाथ, इनका नाम जगन्नाथ, इनका नाम हिंदूनाथ नहीं है, इंडिया नाथ नहीं है, भारत नाथ नहीं है, इनका नाम क्या है, जगन्नाथ। ये यही मुसलमानों के भी भगवान है, यही कृष्ण से ही भगवान है, ये पूरी दुनिया में कीड़े मकोड़े हों चाहे देवी देवता हों, सबके भगवान जगन्नाथ कृष्ण। ओके, तो और भी डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे बिकॉज द टाइम इज अप। ओके, थैंक यू ऑल वेरी मच, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, जय गौ प्रेमानंदे हरि हरि, हरे कृष्णा।